نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. हमने इस माह के शुरू में एक हदीस सुनी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस महीने में जिन चार चीज़ों की कसरत की जाए, उनमें दो तो वो थी, ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तग़फार, और दो चीज़ें जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिनके बग़ैर कोई चारा ही नहीं है, जिनको मांगना तुम्हारी ज़रूरत है, यानी उनको मांगे बगैर तो देर इज़ नो वे आउट। वो क्या थी? जहन्नम से पनाह और जन्नत की तलब। जन्नत को मांगना और जहन्नम से बचने की पनाह की दुआ करना। अब हम दुआएं तो अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, लेकिन हमारी दुआओं में वो तड़प क्यों नहीं है? जैसे कि किसी की जॉब चली जाए तो वो दुआ करता है कि अल्लाह मुझे जॉब मिल जाए। किसी की औलाद नहीं हो तो जिस तरह से वो तड़प के दुआ करता है औलाद के लिए। किसी के बच्चे दुखी हों तो वो ऐसे रो रो के दुआ मांगता है। उस तरह से हम जहन्नम से पनाह की दुआ नहीं करते, उस तरह से हम जन्नत नहीं मांगते। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यही मालूम होती है कि हम इन चीज़ों के बारे में शायद ज़्यादा जानते नहीं हैं। हमें पता ही नहीं है कि जहन्नम के अज़ाब क्या हैं, और ये भी नहीं मालूम कि जन्नत के नज़ारे और वहाँ की नेमतें क्या हैं। ना जन्नत की शौक रह गए आज, और ना जहन्नुम का खौफ रह गया। सच बात है ये, मेरे ख़्याल में आप सब मेरे से एग्री करेंगे इसमें, कि उस तरह से नहीं है जैसे होने चाहिए। उस तरह से हम जहन्नुम से डरते नहीं हैं जैसे दुनिया के किसी गम से डरते हो, जैसे हम कल की फिक्र करते हैं, उस तरह से जहन्नुम की फिक्र नहीं है। सच है या नहीं? इसलिए कि हमने शायद अपने आप को दुनिया में इतना मसरूफ कर लिया और यहाँ की चीज़ों के पीछे इतना भाग रहे हैं कि हमें याद ही नहीं है कि जहन्नुम भी कोई है, उसका खौफ नहीं है, और हम उससे बचने की इसलिए भी फिक्र नहीं करते कि उससे बचने के लिए हमें बहुत सारी अपनी पसंदीदा चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और जो जहन्नम की तरफ जाने वाला रास्ता है वो है भी बड़ा आसान, और उसमें रास्ते में बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें हैं। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़ख़ को लज्जतों में छुपा दिया गया। जो इसकी तरफ जाने वाला रास्ता है ना, वो मज़ेदार है, मज़ेदार चीज़ें हैं, फ़न की चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो नफ्स के ऊपर आसान है और नफ्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। जबकि जो जन्नत है वो नागवारियों में छुपा दी गई है। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। जन्नत को किस में छुपाया गया? ऐसी चीज़ों में जिनको करने को इंसान का दिल गवारा नहीं करता, मुश्किल लगती हैं, उनके लिए कुछ कुर्बान करना पड़ता है, उनके लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। कहीं नींद की कुर्बानी करनी पड़ती है, कहीं खाने पीने की, कहीं अपने फ़न की, मज़ों की। इसलिए जन्नत के शौक भी नहीं, जहन्नम के खौफ भी नहीं, दोनों चीज़ों को आज हम भूल गए। हालांकि हकीकत यह है कि अगर जहन्नम की आग, इसके सांप, इसके बिच्छू, इसके कपड़े, इसके अजाब के तरीके, इसकी खुराक वगैरह ध्यान रहे तो इंसान बड़े से बड़ा गुनाह छोड़ने को तैयार हो जाए, इंसान किसी चीज़ पे किसी कीमत पे अपनी आखिरत ख़राब ना करे। भला जिसको जहन्नुम की भूख की खबर हो वो भला रोज़ा छोड़ सकता है? जिसको जहन्नुम की बेचैनी का पता हो वो ज़रा सी नींद और ज़रा सा आराम इसके लिए नमाज को छोड़ सकता है? जो जहन्नुम के सांप बिच्छुओं के डसने की तकलीफ़ से बाखबर हो वो कह सकता है कि नहीं सदका नहीं करना, माल को जमा करके रखूं? जिसको वहां के जुबुल हुज़्न गम के कुएं का पता हो वो दिखावे की इबादत कर सकता है? जिसको वहां की आग का पता हो वहां की गर्मी का पता हो वो कह सकती है कि हिजाब नहीं लूंगी, यहाँ पे गर्मी बहुत है? तो असल बात यह है कि ये जिक्र जो है ना जन्नत और जहन्नम के वाकई सिर्फ जुबानों तक महदूद रह गए, यकीन के दर्जे पे नहीं गए। वरना बड़े गुनाह तो क्या, छोटे छोटे गुनाह करना भी इंसान के लिए मुश्किल हो जाए। हज़रत अली तो फरमाया करते थे कि अगर जन्नत और जहन्नम मेरे सामने रख दिए जाएं तो मेरे यकीन में ज़रा सा भी इजाफा नहीं होगा। यानी इतना उनका यकीन ऑलरेडी था, इस कदर ईमान बिलग़ैब मजबूत था कि आंखों से देख के भी ऐसे नहीं होगा कि यकीन बढ़ जाए, क्योंकि ऑलरेडी इतना यकीन था जितना बगैर देखे किसी को होता है। जिनको जहन्नुम के हालात की खबर हो ना, फिर गुनाह तो क्या, उनके लिए तो हंसना खुशियाँ मनाना ही मुश्किल हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहि सलाम से पूछा था कि क्या बात है, मैंने मीकाईल अलैहि सलाम को हंसते हुए नहीं देखा। अर्ज़ किया, जब से जहन्नुम की को अल्लाह ताला ने पैदा किया मीकाईल नहीं हंसे। ये मुस्तनद अहमद की रिवायत है, सही मुस्लिम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर तुमने वो मंज़र देखा होता जो मैंने देखा है तो तुम ज़रूर हंसते कम और रोते ज़्यादा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह आपने क्या देखा है? फरमाया, मैंने जन्नत और जहन्नुम को देखा है। अगर इंसान को वाकई जहन्नुम जैसी जगह का पता चल जाए ना, तो ये बेपरवाहियाँ ना रहे हमारी। लेकिन आज कितने आराम से हम ये कह देते ना, नहीं अब ये इसका जिक्र ना करें, हमें तो बड़ा डर लगता है। पता नहीं क्यों इन लोगों को डराने का ही शौक है। नहीं, किसी को डराने का शौक नहीं है, मगर ये डर हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। क्योंकि जिन चीज़ों से इंसान वैसे नहीं मानता, आप खुद सोचें, एक छोटा बच्चा भी है ना, हालांकि कितना मासूम छोटे से बच्चे होते हैं, माँ क्या करती है, उसको डराती है, इस चीज़ से डराएगी उस चीज़ से डराएगी। हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन एक ह्यूमन नेचर है कि वो बात जो वैसे नहीं मानता, डर एक ऐसी नफसियात है जिससे इंसान में जब खौफ आता है किसी चीज़ का भी, तो वो मुश्किल से मुश्किल काम को करने को तैयार हो जाता है। अब फकर व फाके का खौफ ना हो तो इंसान सेविंग्स ना करे, खौफ इंसान से बड़ा कुछ करवा देता है। थोड़ा सा देखें कि जहन्नुम का हाल क्या है, वहाँ पे क्या चीज़ें हैं। जब हम दुनिया के मामलात में इतने खौफज़दा रहते हैं, यहाँ पे फटे कपड़े ना पहनने पड़े, यहाँ पे फाका ना आ जाए, यहाँ पे छोटे घर में ना मूव होना पड़े, तो वहाँ का खौफ नहीं रखना चाहते? असल में सुनते ही कान बंद कर लेते ना, कोई ना सुनाए कोई ना बताए, तो फिर खौफ क्या रह जाएंगे? सब अच्छा है, शैतान भी कहता है सब अच्छा है, चलो करते चले जाओ जो कर रहे हो। अगर सब अच्छा ही है तो जहन्नुम बनाने की फिर ज़रूरत नहीं थी, और वाकई किसी ने भी नहीं जाना उसके अंदर, तो इसकी ज़रूरत क्या थी? आपको पता ना, जहन्नुम का एक एक तबका जो है वो मुसलमानों के लिए ही है। वो तो ऐसी जगह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नुम को चार दीवारी घेरे हुए, जिनमें हर दीवार का अर्ज, उसकी विड्थ 40 साल चलने की मसाफत रखती है। आप देखते हैं, यहाँ पे आप कभी जेल के बाहर से गुजरे, सड़क पे से भी जा रहे होते हैं ना, और जेल दूर नज़र आती है, पता नहीं क्यों एक दिल पे खौफ सा तारी हो जाता है, उसकी बड़ी बड़ी दीवारें देख के, उसकी हैबत एक है। हालांकि क्या दुनिया की जेल है? और वो जो जहन्नम है, जिसकी चार दीवारी ऐसी है कि 40 साल की मसाफत है, और गहराई कैसी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर एक पत्थर जहन्नम में डाला जाए तो इसकी तह में पहुंचने से पहले 70 साल तक गिरता चला जाएगा, 70 साल तक। इतनी डीप है, 70 ईयर्स लगेंगे उसको तह तक पहुंचने में। और उसकी आग कोई ऐसी आग नहीं है जैसी दुनिया की आग होती है, इस कलर की भी नहीं है। हमें अहादीस से क्या पता चलता है कि जहन्नुम को 1,000 साल तक जलाया गया, जल जल के उसकी आग पहले सुर्ख हो गई, जैसे अंगारा होता है ना, इस तरह सुर्ख हो गई, फिर 1,000 साल इसको और धुनका गया तो उसकी आग जल जल के सफ़ेद हो गई, फिर 1,000 साल तक इसको धुनका गया तो इसकी आग स्याह हो गई बिल्कुल। अब कैसी है? स्याह, अंधेरे जैसी। एक रिवायत में भी आता है, वो अंधेरी रात की तरह तारीक है, इसकी लिपटों में भी रोशनी नहीं होगी, यानी हमेशा ही अंधेरा रहता है। बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ये आग जिसको तुम जलाते हो, जहन्नुम की आग का 70th हिस्सा है, 70th हिस्सा। यानी दुनिया की आगों से दोजख की आग समझ लें 69 टाइम्स ज़्यादा बड़ी हुई है। एक रिवायत में कि अगर जहन्नमी को दुनिया की आग में डाल दिया जाए ना, किसी जहन्नमी को जहन्नम से निकाल के, तो उसको नींद आ जाए। ये एक सिर्फ बताने के लिए कि कितनी कूल है ये आग, उस आग से बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो इसलिए इसको तो उसके मुकाबले में कर ही नहीं सकते। तो फिर इसके ऊपर ज़रा हाथ रख के देखें, किसी दिन एक उंगली चला के देखें, एक उंगली ज़रा रख के देखें, कोई भी नहीं रखना चाहेगा ना। $100 देंगे, 200 देंगे, 400 देंगे, कोई कितना भी कह दे, कोई अपना हाथ जलाने को तैयार नहीं होगा, कि कुछ देर के लिए ही, 1 मिनट के लिए सिर्फ अपना हाथ आग में दाखिल करो, 1 मिनट के लिए सिर्फ रखना है, इसके ऊपर आपको इतने डॉलर मिलेंगे, कोई नहीं तैयार होगा, ये सिर्फ एक हाथ है और 1 मिनट है, और वहाँ जहाँ के मिनट ही नहीं गुजरेंगे, और वो आग जो ऐसी गर्म होगी, फिर हैरत होती है लोगों के ऊपर जब कहते हैं अच्छा चलो कोई नहीं है, यहाँ पे तो मज़े कर लें, वहाँ पे जाके जहन्नुम में अगर रहे भी तो फिर तो निकाल लिए जाएंगे, क्योंकि कलमा पढ़ने वाले हमने सुना है कि वो तो निकाल ही लिए जाएंगे, बेशक बेशक, लेकिन क्या 4 दिन की आग भी सह सकते हो? 4 दिन? क्या 1 दिन की भी सह सकते हो? यहाँ पे आप 1 मिनट उंगली आग में नहीं रख सकते। अगर गरम आग बर्तन को हाथ लग जाए तो चीख भी निकलती है, और खुद ब खुद ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन होता है, खुद ब खुद इतनी तेजी से हाथ उससे हटता है, नहीं इंसान से बर्दाश्त हो सकता। और वहां पे तो सबसे जो हल्का अजाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नमियों में सबसे हल्का अजाब उस शख्स पर होगा जिसकी दोनों जूतियां और जूतियों के लेसेस जो हैं वो आग के होंगे। बस ये सबसे हल्का अजाब है कि सिर्फ शूज होंगे उसके आगे, लेकिन उसकी वजह से, सिर्फ वो शूज उसको पहनाए जाएंगे उसकी वजह से उसका जो दिमाग होगा वो हंडी की तरह खौल रहा होगा, जैसे हंडी में आप देखते हैं बुलबुले आते हैं, बुलबुले आते हैं, इस तरह से उसका दिमाग खौल रहा होगा वो जूते पहनने की वजह से। और उसको ऐसा लगेगा कि जैसे सबसे ज्यादा अजाब मुझे हो रहा, हालांकि उसको सबसे कम अजाब हो रहा होगा, उसको लगेगा सबसे ज्यादा मुश्किल में मैं ही हूं। और जैसे कि मैंने बताया था कि इसके 7 हिस्से हैं जहन्नम के, हर एक में इतनी वसत है, हर एक में किस्म किस्म के अजाब है, रंग बिरंगे अजाब है। मसलन एक एक जगह है जहन्नम में जिसका नाम है गई, जिसकी सख्ती से बाकी जहन्नम में सारी जहन्नम भी ना हर रोज 400 दफा पनाह मांगती है, इतनी वो बुरी जगह कि जहन्नम भी उससे पनाह मांगती है। एक और जगह जिसमें बेइंतहा सर्दी है, बेइंतहा सर्दी, उसको कहते हैं जमहरीर। एक जगह है जहन्नम में जिसको कहते हैं जुबुल हुज़्न, यानी गम का कुआं। एक और कुआं है जिसको कहते हैं जहर और पीप की कीचड़। एक पहाड़ है जिसका डिस्टेंस जो है 70 साल की मसाफत के बराबर है उसकी चढ़ाई, जब काफिर को उस पे चढ़ा चढ़ने को कहा जाएगा वो चढ़ा के उसको वहां से फिर जहन्नुम में फेंका जाएगा, फिर चढ़ाया जाएगा, फिर जहन्नुम में फेंका जाएगा। एक पौंड है वहां पे, एक तालाब है जिसका नाम है आबे हमीम, उसका पानी इतना गर्म है कि होंठों तक पहुंचने से ऊपर का होंठ इस कदर सूज जाता है कि नाक और आंखें तक ढक जाती हैं, और नीचे का होंठ सूज के सीने और नाफ तक पहुंच जाता है, जुबान जल जाती है और मुंह तंग हो जाता है, और फिर भी जहन्नमी वो पिएंगे, जब उसका पानी पिएंगे तो हलक से नीचे उतरते ही फेफड़े मेदे आंतड़ियों को फाड़ देगा। और एक और तालाब है जिसका नाम है गसाक, इसमें कुफार का पसीना पीप लहू जमा हो जाएगा। एक चश्मा है, जैसे जन्नत की चीज़ें हैं ना, चश्मे हैं वहाँ पे, नहरें हैं, इस तरह ही यहाँ पे भी चश्मे भी हैं, तालाब भी हैं। इसमें एक चश्मा है जिसका नाम है गसलीन, इसमें कुफार का मैल कुचैल जमा होता है। और इस किस्म के खौफनाक और मनाजिर हैं, और अहले जहन्नुम के जो जिस्म है ऐसे थोड़ी होंगे जैसे कि आज के हैं, ये वाला जिस्म तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता ना ऐसे अजाबों को, तो उनके जिस्म इतने बड़े बड़े कर दिए जाएंगे ताकि जो अजाब हो वो भी ज्यादा हो। फिर सिर्फ जलने का नहीं अजाब, वहां पे सांपों का, बिच्छुओं का काटना भी होगा, कांटों का चबोना भी होगा, खाल का चीरना भी होगा। और हर दफा नई खाल आ जाएगी, जब एक खाल, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, जब एक खाल जिस्म से पिघल के ख़त्म हो जाएगी तो उसकी जगह दूसरी खाल आ जाएगी। ये भी कहा जाता है एक घड़ी में 700 जिस्म बदलते रहेंगे। और हसरत गम नाउमीदी इतनी ज़्यादा होगी, अब देखिए यहाँ पे लोग कहते हैं कि फिज़िकल टॉर्चर इतना बुरा नहीं है जितना मेंटल टॉर्चर है, ये कहते हैं ना, मेंटल टॉर्चर कहते हैं कि बहुत बुरी चीज़ है, मेंटली इंसान अगर स्टेबल नहीं है, मेंटली अगर इंसान के को टेंशन है या कुछ है तो वो कहते हैं ये फिज़िकल से भी ज़्यादा बुरा है। वहाँ पे फिज़िकल भी है मेंटल भी है, क्योंकि वहाँ पे उनको जो जहन्नुम के दारोगे होंगे वो इतना डांटेंगे, इतनी ताने देंगे, जिसको कुरान पाक में कहा जाता है ना, जैसे कि सूरह सजदा में ही पढ़ा था कि गेंद से कहा जाएगा, आप चखो इस अजाब को, इस आग के अजाब को जिसको तुम झुटलाते थे। ताने देंगे यानी उनको, और फिर उनसे कहेंगे, तुम्हें नहीं पता था क्या? तुम नहीं ये जानते थे कि अल्लाह ताला ने जहन्नुम को बनाया? तुमने क्यों नहीं इसकी तैयारी की? तुमने क्यों नहीं इसके लिए कुछ वहाँ पे से अमल लेकर आए? तुमने क्यों नहीं रसूल की इताअत की? फिर ये कहेंगे, अब तुम्हें क्या हुआ, एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते जैसे दुनिया में किया करते थे? क्यों नहीं कर रहे आप एक दूसरे की मदद? तरह तरह से उनको बातें की जाएंगी, और इसके ऊपर ये तक कि उनके अंदर जो गम होगा ना, जो हसरत होगी, जो नाउम्मीदी होगी कि हम क्यों यहाँ पे आ गए, हमने क्यों अपनी जिंदगियाँ ऐसे गंवा दी। आप खुद सोचें, थोड़ी सी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें नाकामी हो जाए, उसमें नुकसान हो जाए, कितनी लोगों को हसरत होती है, इतना उस नुकसान का लोगों को मलाल होता है ना, हार्ट अटैक हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं कि बिजनेस में हमें नुकसान हो गया, हाय हमारा सारा जो सरमाया था वो डूब गया। कितना गम करते हैं लोग इतने से नुकसान पे। ये जो टेंशन है आजकल, डिप्रेशन है, ये भी किस वजह से होते हैं? ज़्यादातर आप देखें ये आदि बीमारियां जो लोगों को, ये इसी वजह से ना, ये दुनिया का कोई ना कोई गम पाला हुआ, कोई ना कोई यहीं की मुश्किलात, यहीं की परेशानियां इतनी ज़्यादा जहन पे सवार की हुई। आप खुद सोचें, दुनिया के थोड़ी सी परेशानी पे इंसान का ये हाल हो जाता है, तो उस गम को और हसरत को सोचें कि जो इंसान ये समझेगा अब ये यहाँ से जब निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और वो मेरे पास कितने सारे लम्हात ज़िंदगी में ऐसे आए। हसरत किस चीज़ पे होगी? देखिए, हसरत किसी चीज़ पे होती है ना, कि कोई चीज़ के हाथ से चले जाने पे होती है, कि मैंने एक लम्हा भी वहाँ पे क्यों ऐसा गुजारा, मेरे पास इतने साल थे, इतना टाइम था, मैं क्या करती रही, क्यों नहीं मैंने उसको अवेल किया, अरे मैंने क्यों उसको ऐसे छोड़ दिया, मैं क्यों क्यों ऐसे आ गई, मैंने क्यों नहीं उस वक़्त समझदारी का सबूत दिया, मैंने क्यों नहीं अक्ल की। जैसे सूरह मुल्क में भी है ना, कि वो कहेंगे काश हम सुनते, काश हम अक्ल कर लेते उस वक़्त। अब ये हसरत सोचे कितनी ज़्यादा होगी, यहाँ पे तो सिर्फ पैसा डूबता है ना, वहाँ पे तो सारी ज़िंदगी डूब गई, सारी। और हाल क्या होगा वहाँ पे, भूख और प्यास इतनी शदीद होगी, फिजिकल टॉर्चर भी है ना, कि मुद्दते दराज तक सिवाय दीगर अजाबों के भूख का अजाब भी इस कदर सख्त कर दिया जाएगा, यानी जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा भूख इतनी बढ़ती जाएगी कि सारे अजाबों के बराबर भूख हो जाएगी। इतने बेचैन बेकरार होंगे, मांगेंगे कि हमें कुछ खाने को मिले। हुक्म होगा कि एक दरख्त है जकूम का, बहुत कड़वा, कांटेदार, और जहन्नुम की तह में है, वो उनको खाने को दिया जाएगा। उसको खाना शुरू करेंगे तो वो गले में फंस जाएगा, कहेंगे दुनिया में जब हमारे गलों में कुछ फंस जाता था तो हम पानी से निगला करते थे, अब हमें पानी दो। हुक्म होगा जहीम से पानी लेकर आओ। पानी के मुंह तक पहुंचते ही होंठ जल के इतने सूज जाएंगे, जुबान सुकड़ जाएगी, आंतड़ियां फट जाएंगी। इस हालत से इतने बेकरार होंगे, जहन्नम के दारोगा से कहेंगे, आहुजारियां कहेंगे, हम तो मारे गए, हाय इस मुसीबत से हमें निजात, अरे हमें मौत ही दे दे, हमें मौत ही दे दे, हमें मौत आ जाए, मौत पुकारेंगे, अल्लाह मर जाए, इससे तो मौत अच्छी है। यहाँ पे इंसान मुसीबत में, बहुत कोई तकलीफ़ में हो ना, तो वो मौत मांगने लगता है। आप देखें जो सख्त बीमारियाँ होती हैं, तकलीफ़ दे बीमारियाँ होती हैं, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए जो जो लोग उनमें मुब्तला होते हैं। आप देखें अस्पतालों में वो कहते हैं हमें ऐसे टीके लगा दो कि हम मर जाएं, हमने ये जो सिसक सिसक के मरना है, हमें एक ही दिन में मौत आ जाए, कहते हैं ना। कई लोग उससे तंग आकर खुदकुशी ही कर लेते हैं। वो भी इस तरह मौत पुकारेंगे, लेकिन मौत आएगी नहीं, मौत उनको ब्लेसिंग लगेगी। ब्लेसिंग जिस मौत को इंसान ना पसंद करता ना, वो उनको रहमत लगेगी कि मौत आ जाए हमारा काम खत्म कर दे। फिर कहेंगे हाय दारोगा जहन्नुम से, कहेंगे मालिक, उसका नाम मालिक है, कहेंगे एक दिन के लिए, कुछ देर के लिए ही हमें कुछ डिले मिल जाए, कुछ इसको थोड़ी देर के लिए ब्रेक हमें दे दो कि हमें ब्रेक मिल जाए इस अजाब से। ब्रेक कोई नहीं होगा उसमें, कोई थोड़ी देर के लिए ऐसा टाइम नहीं होगा जिसमें चलो थोड़ा फ्रेश अप हो जाए फिर उसके बाद कोई अजाब शुरू हो, नहीं, कंटिन्यूस अजाब। ऐसे अजाब में कोई रह सकता है? एक दिन भी अजाब का इंसान नहीं सह सकता। वहां पे तो एक गोता, एक जस्ट एक डुबकी एक आदमी को दी जाएगी, एक डुबकी, सोचे, एक समझ लें एक टूअर ही कराना हुआ, एक टूअर जहन्नुम का कराया जाएगा ना उस इंसान को जिसने सारी जिंदगी कोई गम नहीं देखा। बहुत बड़ा बादशाह रहा, बड़ी खुशियां उसने देखी, कोई गम नहीं उसकी जिंदगी में, सिर्फ एक चक्कर लगाने पे ना वो कहेगा, जब उससे पूछा जाएगा कैसा है, कैसा पाया जहन्नुम को, कहेगा मैंने तो सारी जिंदगी कोई खुशी देखी ही नहीं, इतनी जल्दी रफू हो जाएंगी ये खुशियां। एक एक टूअर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता इंसान वहां का, और फिर इतने आराम से मुंह से बोल दें कोई बात नहीं हम वहां पे थोड़े दिन रह जाएंगे तो क्या हो गया, कैसे बोल सकते हो, कैसे कह सकते हो। हमारी तो सबसे बड़ी तमन्ना ये होनी चाहिए अल्लाह बस हमें आग से बचा लेना। वो तड़प होनी चाहिए हमारी इस दुआ के अंदर कि जैसे हम जहन्नुम को सामने देख रहे हैं कि अल्लाह एक सेकंड के लिए भी मैं यहां पे चली गई, मैं कैसे इसको बर्दाश्त कर सकती हूँ। जब उसको दूर से ही देखेंगे ना तो उसका इतना शोर होगा, इतना उसकी चीख और पुकार होगी कि वो गुस्से से फट रही होगी। इसका मतलब उसमें इतनी समझ है कि उसको गुस्सा आएगा, ये कैसे रब की नाफरमानी करके यहां पे आए हैं। इतनी गजबनाक होगी लोगों को दूर से देख के जहन्नमी होगा, और वहां पे उसकी किसी तंग जगह में इनके हाथ पांव जकड़ के डाल दिया जाएगा। यानी वैसे तो जहन्नुम बहुत वसी जगह है, बहुत बड़ी है जहन्नुम, लेकिन अजाब के लिए दोजखियों को तंग तंग जगहों में डाला जाएगा। बाज रिवायात में खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी तफसीर मनकूल है कि जिस तरह दीवार में कील गाड़ी जाती है ना, देखा है दीवार के अंदर कील जब डाली जाती है तो कितनी तंग जगह होती, इस तरह जहन्नमियों को जहन्नुम में ठूसा जाएगा। तो जिस तरह जानवर दाना तलाश करके चुगता है ना, इसी तरह जहन्नुम मैदाने हशर से बुरे लोगों को एक एक करके चुनेगी, जैसे मुर्गी चुनती है ना दाना, इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन इंसान को बकरी के बच्चे की तरह, यानी इस तरह हुआ होगा जिल्लत की हालत में लाके अल्लाह के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला इससे फरमाएंगे क्या मैंने तुझे माल नहीं दिया था, मुवैशी गुलाम खादिम नहीं दिए थे, यानी तुझे नौकर चाकर दिए थे, तुझे माल दिया था, तुझ पे इनामात नहीं किए थे, बता तूने इसके शुक्र में क्या किया। इस पे वो जवाब देगा परवरदिगार मैंने जमा किया, खूब बढ़ाया, और जितना था इससे कहीं ज़्यादा मैं छोड़ आया, मुझे इजाज़त दे मैं सारे को ले तो आऊँ, वहाँ पे बैंकों में पड़ा हुआ है, वहाँ पे उस जगह पड़ा हुआ है, मेरी इतनी ज़मीनें थी, इतनी जायदादें थी, अब मुझे इजाज़त दे मैं वहाँ से लेकर आऊँ दुनिया से, क्योंकि उसने कोई खैर आगे तो भेजी ही नहीं थी, सब दुनिया में ही छोड़ा हुआ है। तो उसको फिर दोजख में पहुंचा दिया जाएगा, अब कहां पे ला सकते हो, लेकर तो पहले आना चाहिए था। और अजाबों के साथ साथ वहां पे जो इन कीड़े मकौड़ों के काटने का अजाब है, सोचे एक जरा सा सांप देख के, छोटा सा सांप देख के इंसान की जान निकल जाती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जहन्नम में बड़ी बड़ी लंबी गर्दनों वाले ऊंटों के बराबर, कैमल्स के बराबर सांप होंगे, और उनका जहर पता है कैसे होगा कि एक बार जब उनमें से एक सांप डसेगा, और सिर्फ उसको देखेंगे नहीं, हालांकि सांप जो है उसको देखने की हैबत बहुत है, उसको कोई देख ही ले तो उस वही बहुत बड़ी इंसान के लिए हैबत है। और कुछ ये कि वो काटे, एक सांप डसेगा एक दफा तो दोस्त की 40 साल तक उसकी पेन महसूस करता रहेगा। और स्कॉर्पियंस कितने बड़े हैं, जितने खच्चर होते हैं, पोनीज। अल्लाह रहम फरमा, आप मुझे बताएं हम कहाँ इन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं, हम कहाँ उस खाने को बर्दाश्त कर सकते हैं कि जो जहन्नमी को दिया जाएगा वो खौलता हुआ पानी और वो कांटोदार खाना जो ना निगले चैन ना उगले चैन, ऐसा खाना जिसको जिसको आपने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाज में एक कांटेदार दरख्त है उसको दरिया कहते हैं। ये अब उस दरख्त को जब जानवर खाया करते थे ना, तो जानवर उसके पास नहीं जाते थे, अगर खा लेता था कोई तो मर जाते थे। तो ये कांटेदार था यहाँ पे, उससे रिलेटेड वहाँ पे एक ऐसा दरख्त बताया गया कि जो इतहाई बदबूदार है, आग से ज़्यादा गर्म है, और उसको खा के भूख भी दूर नहीं होगी, और कोई गम ख्वार नहीं होगा वहां पे जिसके पास बैठ के रो लो, जिसको कोई दुख अपना बता दो, कोई दोस्त नहीं होगा, और पीने के लिए जख्मों के धोवन के अलावा कुछ नहीं है, और पिघला हुआ तांबा है, जख्मों की पीप है, खौलता हुआ पानी है, ये है वहां की गिजाएं। यहाँ पे तो कल की बासी चीज़ नहीं खाते, कहते हैं कल का खाना है, फ्रेश खाना होना चाहिए, ये तो हमने कल भी खाया था, फ्रिज का खाना हमें खिला रहे हैं, फ्रोजन खिला रहे हैं, पुराना खिला रहे हैं, वो तो खाते नहीं, क्या इस खाने के लिए तैयार हैं जो एक लम्हे के लिए भी, एक टाइम का भी हम ये नहीं खाना खा सकते कि जक्कूम का एक कतरा दुनिया के दरियाओं में डाल दिया जाए तो दुनिया वालों की ग़िज़ाएं कड़वी हो जाएं, तो उसका क्या हाल होगा जिसका खाना ही जक्कूम है, सारी दुनिया के खाने कड़वे हो जाएंगे एक कतरा उसके दुनिया में डाला जाए तो, और कभी वहां पे ठंडे पानी का मज़ा नहीं चख सकेंगे, हालांकि गर्मी है, जिस जगह में इतनी सख्त आग हो वहां पे तो इंसान कहता है ठंडा पानी आ जाए, और फिर सरों के ऊपर भी जलता हुआ पानी डाला जाएगा जिससे इनके पेट और खाले सब कुछ गल के बाहर निकल आएगा, और इसके ऊपर फिजिकल ये मार होगी, ऐसा इनको मारा जाएगा, ऐसे गुर्जों से मारा जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोज़ख का लोहे का एक गुर ज़मीन पे रख दिया जाए तो अगर इसको तमाम जिन्नात और इंसान मिलके उठाना चाहें तो उठा नहीं सकते, सारे मिलके उठाएं, सारे मिलके जोर लगाएं, इतना वो वज़नी है, नहीं उठा सकते, उससे मार इनको मारी जाएगी, और जकड़े में होंगे, तौक पहने में होंगे, और कपड़े किसके हैं, गंधक के कपड़े हैं जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, और कतरान के कपड़े हैं जो पिघला हुआ तांबा है, इसके लिबास होंगे। अस्तग़फिरुल्लाहि रब्बी, अस्तग़फिरुल्लाहि रब्बी, अल्लाह ताला हम सबको माफ़ कर देना। तो हज़रत क़तादा फरमाते हैं कि गुनाहगार के बाल पकड़ के जहन्नम में जो पानी है इसमें गोख्ता दिया जाएगा तो उसका तमाम गोश्त गल के गिर जाएगा और हड्डियों के ढांचे और दो आंखों के सिवा कुछ नहीं बचेगा। क्या ऐसी आग के लिए कोई तैयार है, कोई तैयार है? इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रो, रो नहीं सकते तो रोनी सूरत ही बना लो, क्योंकि जहन्नम में जहन्नमी इतना रोएंगे, इतना रोएंगे इनके चेहरों पे नालियां बन जाएंगी रो रो के, आंसू निकलने बंद हो जाएंगे, खून बहने लगेगा जिसकी वजह से आंखें जख्मी हो जाएंगी। अगर उनके आंसुओं में कश्तियां छोड़ दी जाएं तो वो भी चलने लगे, इतना रोएंगे वो। और जिस्म इतने बड़े बड़े हो जाएंगे कि दोजख में दोनों जो कंधे हैं इनके दरमियान कितना फासला होगा, 3 दिन के रास्ते के बराबर। तो तेज रफ्तार चले तो 3 दिन में पहुंचे, और एक एक दाढ़ जो है, दांत जो है, ओहद पहाड़ के बराबर कर दिया जाएगा। और उसकी खाल की मोटाई कितनी होगी, 3 दिन के रास्ते के बराबर, ताकि और अजाब चखे, और अजाब चखे। आप सोचें, एक दाढ़ का दर्द इंसान को सोने नहीं देता सारी रात, कितनी छोटी सी दाढ़ और इतनी बड़ी दाढ़। फिर कैसे नहीं मांगते जहन्नुम से पनाह, फिर कैसे नहीं कहते अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। या अल्लाह, हम नहीं सह सकते इस अजाब को, अल्लाह एक लम्हे के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी हमें जहन्नुम में दाखिल ना करना। अल्लाह हम नहीं देख सकते उस अजाब को, हम दूर से भी नहीं देख सकते, अल्लाह तू ना हमें दिखाना। या अल्लाह, हम तेरी रहमत की पनाह में आते हैं, अल्लाह हमें अपनी रहमत में ले ले। हम कैसे सह सकते हैं बताएं, जो लोग इस दुनिया में चंद लम्हे की गर्मी नहीं सह सकते, वो कहते हाय गर्मी, हाय गर्मी, पंखा चलाओ, एसी चलाओ। अल्लाह, वो कैसे आँखों को सह सकते हैं? ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको इसकी तफसील बताऊं तो आप सो ना सकें। आपकी सबसे बड़ी तमन्ना ही ये हो जाए कि हम जहन्नुम से बच जाए, आपको सारी और दुआएं ही भूल जाए। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान में, ये तो दो चीज़ें ना, ये तो इंसान की ज़रूरत है, इसके बगैर तो चारा ही नहीं है। यानी चारा नहीं मतलब है नो वे, इसके बगैर नो वे आउट। ये है कि जहन्नुम से पनाह मांगी जाए और जन्नत को तलब किया जाए, लेकिन हमें होश नहीं। हमारी दुआओं में सबसे पहली दुआ क्या होगी, अल्लाह ताला ये हो जाए, ये काम हो जाए, मेरा फलाना हो जाए। ठीक है, आप मांगो, दुनिया मांगो, कोई नहीं कहता नहीं मांगो, लेकिन क्या जहन्नुम से पनाह मांगना भी आपकी उस तरह प्रायोरिटी है जैसे दुनिया के गमों से आप पनाह मांगते हैं? क्या जहन्नुम से बच जाना की भी आपको उस तरह से फिक्र है जैसे दुनिया की चीज़ों की फिक्रें हैं? क्या अपनी औलाद को उसी तरह जहन्नुम से हम बचाना चाहते हैं जैसे अपनी औलाद के को कल को दुनिया के अंदर रुसवा होता, जलील होता, उससे बचाना चाहते हैं? क्या उसी तरह जहन्नुम से बचाना चाहते हैं जैसे कल को अपनी औलाद को गुर्बत से बचाना चाहते हैं? क्या उसी तरह जहन्नुम से बचाना चाहते हैं? नहीं ना, ये हमारे गम नहीं रहे अब, ये हमारी फिक्रें नहीं रही अब, कुछ और बन चुकी हैं। अपनी प्रायोरिटीज़ को स्ट्रेट करें। क्या कर सकते हैं इसमें, सुबह उठें तो 7 दफ़ा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अगर अपने लिए सिर्फ कह रहे हैं, और अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, मेरे तो मुंह से निकलता ही है अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, क्योंकि अल्लाहुम्मा अजिरनी कहती हूँ तो फौरन अपने सारे घर वाले याद आते हैं। या अल्लाह, हम सबको जहन्नुम की आग से बचा ले। 7 दफ़ा सुबह ये कलिमात कहें और 7 दफ़ा शाम को कहें, तो जहन्नुम भी फिर ऐसे इंसान के लिए दुआ करती है, अल्लाह इसको मेरे से बचा लेना। तो ये हमारी सबसे बड़ी दुआ होनी चाहिए, सबसे पहली दुआ होनी चाहिए, इसकी सबसे ज़्यादा हमें फिक्र होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। अल्लाह ताला एक लम्हे के लिए भी हमें ये मंजर ना दिखाना जहन्नुम का, इसके लिए सदका दे। सदका गुनाह को ऐसे ख़त्म कर देता है जैसे पानी आग को, जैसे पानी से आग बुझ जाती है ना, इस तरह सदका डालोगे तो गुनाह इस तरह बुझ जाएंगे। गुनाह बुझेंगे, जितने गुनाह बुझा लोगे उतनी ही जहन्नुम से पनाह मिल जाएगी। तो सदका निकालें, कुछ ना कुछ खर्च करें, कुछ ना कुछ दें अल्लाह के रास्ते में, हाथ को तंग ना करें, और अल्लाह का जिक्र खूब करें। अल्लाह का जिक्र बहुत ज़्यादा करें। आज का जो जिक्र है वो उसके लिए सिर्फ यही बात कहनी काफ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिक्र मुझे तमाम दुनिया से ज़्यादा महबूब है। जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें कि तमाम दुनिया से ज़्यादा महबूब है वो जिक्र, कितना प्यारा जिक्र होगा ना, कि मुझे सारी दुनिया से ज़्यादा प्यारा ये जिक्र है। और वो है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये सही मुस्लिम की रिवायत है, यानी जो तीसरा कलमा है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया से ज़्यादा महबूब था, तो हमें भी इतना ही महबूब होना चाहिए। इसी तरह अल्लाह ताला के इस्म आज़म के साथ जो दुआ की जाए वो कबूल होती है। और हदीस में अल्लाह ताला का इस्म आज़म इस आयत में है, व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। तो ये बड़े ताकतवर कलिमात हैं, ये कह के दुआ किया करें, इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इलाह तुम्हारा इलाह एक ही है, नहीं कोई इलाह सिवाय उसके, वो रहमान और रहीम है। और बाज़ कहते हैं, बाज़ उलमा कहते हैं कि अल्लाह जो अल्लाह ताला का नाम है यही उसका इस्म आज़म है। इसको जो खुलूस के साथ, दिल की गहराई के साथ, पूरी तवज्जो के साथ समझ के, जान के, फिर इससे इसके ज़रिए से दुआ करेगा तो वो कबूल की जाती है। तो आज की हमारी दुआ यही है, अल्लाहुमा अजिरना मिनन नार। बल्कि अब पूरे रमज़ान में टॉप पे होनी चाहिए ये दुआ। अगर हम जहन्नुम से बच गए ना और जन्नत में दाखिल हो गए, बस फिर सेफ्टी है, फिर सेफ हैं हम, फिर कोई परवाह नहीं है। क्योंकि दुनिया में जितने गम भी आप उठा लें, आपको शायद लगता होगा दुनिया की परेशानियां ही बड़ी परेशानियां हैं। अरे दुनिया में जितनी मर्जी परेशानियां हो जाए ना, यकीन करें एक टूर आप जन्नत का लगा लेंगे, एक टूर सिर्फ, एक गोता। हदीस में आता है एक गोता सिर्फ, एक चक्कर सिर्फ, एक दफा मतलब झांक आएंगे जन्नत को, तो सब दुनिया के गम भूल जाएंगे आपको। ऐसे इंसान को अल्लाह ताला खड़ा करके पूछेंगे कैसा पाया तुमने जन्नत को, वो कहेगा अल्लाह मैंने तो कभी कोई गम देखा ही नहीं। इतनी ज़्यादा ये भुला देंगी, इतनी अच्छी नेमतें होंगी। और कल इंशाअल्लाह ताला हम उनका भी जिक्र करेंगे कि जन्नत कैसी है। मैं चाहती हूँ कि हमारे अंदर ये शौक़ डिवेलप हो जाए, कम अज़ कम इस रमज़ान में हम जन्नत के शौक़ ले कर उठें और जहन्नुम का खौफ अपने अंदर पैदा करें। आज की सुन्नत जो है वो है चाश्त की नमाज। चाश्त की नमाज ये 4 रकत होती हैं, ये सनराइज से तकरीबन 1 घंटे बाद, ये सनराइज के यानी 1-1.5 घंटे के बाद आप ये अदा कर सकते हैं, यानी जब सूरज बिल्कुल थोड़ा ऊपर हो जाए उस वक़्त अदा कीजिए। यानी हमारा कहने का हो सकता है 9 बजे का टाइम इस तरह से। तो ऐसे इंसान की दिन भर के सारे काम अल्लाह ताला अपने जिम्मे ले लेते हैं। और इसकी 2 रकत पढ़ने से ही जिस्म के 360 जोड़ों का सदका अदा हो जाता है और तमाम गुनाहों की मगफिरत हो जाती है। और कई जगह पे लिखा है कि 2.5 घंटे के बाद, मगर बाहर कैफ मैंने आपको बता दिया कि जो हदीस में इसके बारे में बताया जाता है वो ये कि उस वक़्त जब कि धूप ज़रा तेज़ हो जाए, यानी ज़रा थोड़ा सा सूरज ऊपर आ जाए, धूप ज़रा तेज़ हो जाए, उस वक़्त की है। 9 बजे तक, 9-10 बजे तक की आप उस वक्त पढ़ सकते हैं ये चाश्त के नफल दो पढ़ लें, चार पढ़ लें, जितनी आपको तौफीक हो। अल्लाह ताला हमारी ये टूटी फूटी ये बातें कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हमें अपना बेहतरीन जिक्र करने वाला, शुक्र करने वाला और अच्छी इबादत करने वाला बना दे। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।